हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 33। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, सादृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर् ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं तिष्ठति स्वस्या प्रकृतिं ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं तिष्ठति स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं तिष्ठति स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं तिष्ठति स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं तिष्ठति स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। शब्दों का अर्थ देखिए। सदृशम अर्थात अनुसार, चेष्टते यानी चेष्टा करता है, स्वस्य यानी अपने, प्रकृति यानी गुणों से, यानी कि जैसे जैसे प्रकृति के गुण होते हैं, जो जिस समय जो गुण होता है तो उसी के अनुसार हम चेष्टा करते हैं। हम ही नहीं, आगे भगवान कहते हैं ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान माने बुद्धिमान या विद्वान, अपि माने यद्यपि, जो बुद्धिमान होते हैं ना उसको भी यदि अगर प्रकृति का गुण जो है वो अटैक करता है तो उसी गुण के अनुसार करता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, प्रकृतिम यानी प्रकृति को यान्ति मतलब प्राप्त होते हैं भूतानि यानी सारे प्राणी, जितने भी प्राणी हैं वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, यानी कि प्रकृति उसको कार्य करने पर विवश कर देती है। तो भगवान आगे कहते हैं निग्रह किम करिष्यति, निग्रह का मतलब होता है दमन, किम मना क्या, करिष्यति यानी कर सकता, यानी कि अगर आपकी प्रकृति है, आप ना क्षत्रिय हो तो आपकी प्रकृति है कार्य करने की, युद्ध करने की, तो निग्रह किम करिष्यति, रोकने से मतलब दमन करने से क्या प्राप्त होगा, क्योंकि आप अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करने पर विवश हो। तो भगवान ने कल बताया कि यदि मेरे आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे तो क्या होगा, ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तु मुच्यन्ति तेपि कर्मभि। यदि मेरे कर्म मेरे अनुसार, जैसे मैंने मेरे मत के अनुसार कार्य करेंगे तो क्या होगा, श्रद्धा से कार्य करेंगे तो मुच्यन्ति तेपि कर्मभि, अपने कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे। और अगर नहीं करेंगे तो भगवान ने 32 में बताया, ये तदभ्य सूयन्तु नानो तिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्त्वं विद्धि नष्टान चेतसा। कि अगर वो मेरे मतानुसार कार्य नहीं करेंगे तो फिर समस्त ज्ञान रहित, यानी जिसका जितना भी उसका ज्ञान है वो ज्ञान से दिग्भ्रमित और अपने प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो अर्जुन ने पूछा फिर क्यों नहीं सब आपके मत के अनुसार कार्य करते हैं, जब उनका पतन होगा तो उनको सोचना चाहिए ना कि हम कृष्ण की बात के बात को मानकर कार्य करें, फिर क्यों नहीं करते। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि प्रकृति जो है वो आपको कार्य करने पर बाध्य कर देती है। क्योंकि सभी प्राणी, अनुवाद देखिए, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या होगा। भगवान कहते हैं फिर दमन करने का क्या कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सब अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। सदृशम चेष्ट ते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवान अपि, सब करते हैं जो ज्ञानी है, जिसको अक्कल आ जाती है, जिसको पता भी चल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी जो प्रकृति के अनुसार जो गुण होगा वो कार्य वही कार्य करता है। तो फिर भगवान कहते हैं निग्रह क्यों करिष्यति, निग्रह करने से क्या फायदा है। अभी यहाँ पर एक बात, ये निग्रह किम करिष्यति से एक बात याद आ रही है कि बहुत से लोग होते हैं जो श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक को कोट करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे LIC वालों ने जो है ना, रक्षा करने वाले होते हैं ना LIC वाले, उन्होंने एक भगवद गीता का श्लोक है ना चुन के निकाला है 9.22, योग क्षेमम वहामहम, कि आपकी आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे और जो आपके पास है उसकी रक्षा करेंगे। और जो क्रिश्चियन लोग है ना, क्रिश्चियन लोग के कुछ लोग जो है वो धर्म परिवर्तन, मतलब हिंदू कम्युनिटी के कुछ लोग धर्म परिवर्तित करके क्रिश्चियन की तरफ चले गए, कन्वर्ट हो गए, तो उनको वापस से अपने धर्म में वापस लाने के लिए उन्होंने एक श्लोक भगवद गीता का है ना कोट करते हैं। वो क्या कहते हैं, पर धर्मो भयावह, इसको होम कमिंग। अभी पर धर्मो भयावह भगवान ने इसलिए नहीं कहा, भगवान ने क्यों कहा है कि क्योंकि अगर आप अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य नहीं करते हो तो दूसरों की प्रकृति का इख्तियार करते हो तो वो भयावह। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिश्चियन और हिंदू बन जाने के लिए भगवान ने इससे नहीं कहा, लेकिन फिर भी बस उस लोग ऐसे करते, भगवद गीता का कोई एक श्लोक निकालते। तो ये जो आज का हमारा श्लोक है ना, निग्रह किम करिष्यति बला दमन से क्या होगा, तो ओशो रजनीश नाम सुना होगा आपने, उस लोग ने ये वाला श्लोक को कोट करते हैं और कहते हैं जीव को जो भी भोग करने की इच्छा है भोग करो, निग्रह से क्या होने वाला है, निग्रह किम करिष्यति, निग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो मर्जी आए करो। लेकिन यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि हर जीव को अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके मन में आता है आप उसको करो, मन में आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है, लेकिन प्रकृति के अनुसार कार्य करना है, लेकिन शास्त्र की सीमा रेखा के अंदर रहकर, शास्त्र की मर्यादा के अंदर रहकर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना है। लेकिन लोग भगवान की भगवद्गीता के शब्दों को क्योंकि किसी प्रमाणिक गुरु के माध्यम से नहीं सुनते हैं तो शब्दों का मिस यूज करते हैं। अरे दुर्योधन था ना, दुर्योधन वो भी ऐसे ही कहता था, कि क्योंकि सब लोग अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं तो मैं भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता हूँ। मैं लोभी हूँ, भले आप बोलते हो कि मैं लोभी हूँ, तो मेरी नियति मुझे लोभ करने पर है ना विवश कर रही है, मेरी प्रकृति के अनुसार मैं लोभी हूँ, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? निग्रह किम करिष्यति, दमन करने से क्या होगा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर ये है कि अगर आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण जैसे कार्य करो, अगर आपकी प्रवृत्ति क्षत्रिय जैसी है तो क्षत्रिय जैसे कार्य करो, वैश्य अथवा शूद्र हो तो उसके अनुसार ही कार्य करो। यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हो, भले किस अपनी व्यवस्था चलाने के लिए कर रहे हो या जो भी करने के लिए कर रहे हो, तो आपकी प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, गुणों के अनुसार। जैसे ब्राह्मण की प्रकृति क्या है? अध्ययन करना, शास्त्र अध्ययन करना, पढ़ना। तो ब्राह्मण क्या करेंगे, वो किधर भी चले जाएं, भले उनको कुछ भी उसकी प्रकृति के अनुसार, ये हमारी ये कैसे बनती है प्रकृति, हमारी कैसे बनती है, पिछले जन्म में हमने जो कार्य किए होते हैं ना, उसके अनुसार आज हमारा, भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग है। तो गुण आपके अंदर जैसा होता है और जैसे आपने पहले जन्म में कर्म किए हैं, उसके अनुसार आज आपको वह प्रकृति मतलब मिल जाती है। आप उसी हिसाब से आज ब्राह्मण जैसे आपकी आपके अंदर ब्राह्मण जैसी क्वालिटीज हैं, तो इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में आपने ऐसा कार्य किया होगा जिसकी वजह से आज आपको ब्राह्मण जैसी प्रवृत्ति मिली है। तो आज अगर आपको शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं, ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, शास्त्र पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा रुचि होगी, तो आज अगर आप शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करोगे तो ब्राह्मण क्या करेंगे, वो कार्य अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से ही करेंगे जैसा उसका, लेकिन वो ज्ञान लेना नहीं करेंगे, बल्कि वो एटम बम बनाने के लिए, एटम बम चूंकि बुद्धि है तो उसके अंदर भी तो एटम बम लगेगा ना। तो पहले क्या होता था कि बम बनाते थे और बम बना जिधर भी फेंक देते थे तो वहां का पूरा एरिया जो है वो तहस नहस हो जाता था, सब मर जाते थे। लेकिन अभी अगर अभी क्या सोचते हैं कि अगर हम किसी मुल्क में बम फेंकते हैं तो वहां की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितना भी वहां पर है ना जो कुछ भी बना हुआ है, वो बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, वो सब ब्लास्ट हो जाती है। वो हमें सबको ब्लास्ट नहीं करना, हमें सिर्फ लोग को मारना है और बाकी चीजों को नहीं खत्म करना है। तो फिर वो ब्राह्मण प्रकृति वाले लोग ही होते हैं जो ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं। वो पता क्या करते हैं कि वो ऐसा बम बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं कि बॉम्ब बनाएंगे तो वहां पर फेंकेंगे तो वहां की कोई भी चीज को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, सिर्फ उसके अंदर से ऐसे जंतु निकलेंगे जैसे एक मोबाइल जब फटेगा तो उसके अंदर से इतने जंतु निकलेंगे कि 6 माइल्स तक जितने भी लोग हैं उन सब की जो जीव हैं, जितने भी जीव लिविंग बॉडीज उनके नाक के अंदर चले जाएंगे और सब मर जाएंगे। यानी कि इसके लिए कितनी बुद्धि चाहिए होगी। यानी कि वो ब्राह्मण जब वो तमोगुण में रहकर कार्य कर रहा है तो विनाशकारी कार्य कर रहा है, अपना भी और मतलब सारे लोग को विनाश करने के, वो अपने स्तर के अनुसार कार्य कर रहा है। ब्राह्मण प्रकृति को चेंज नहीं कर रहा है लेकिन तमोगुण में रहकर वो इस तरह के विनाशकारी कार्य करता है। और वही ब्राह्मण यदि तमोगुण से ऊपर आ जाता है, रजोगुण में आ जाता है, तो कर्म कांड करता है वो, वही शास्त्र के अनुसार ना यज्ञ करेगा इत्यादि, लेकिन क्यों करेगा, स्वार्थ के लिए कि मुझे ये प्राप्त होगा, उससे मुझे ये प्राप्त होगा। अपनी प्रकृति चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ गुणों के अनुसार क्या कर रहा है, वो अपने प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन जो उससे रिजल्ट है ना वो चेंज हो रहा है। जैसे वो था ना शुक्राचार्य, वो राक्षसों के गुरु थे, तो वो है ना वो यही कार्य करते थे, अपने स्वार्थ के अनुसार कार्य करते थे। राजा बलि को बोला नहीं दो इसको, 3 पग धरती मत दो, हालांकि जानते थे भगवान है वो, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रकृति से मजबूर हो जाता है कार्य करने के लिए। लेकिन हम गुणों में ऊपर आ सकते हैं, प्रकृति को चेंज नहीं करना है, गुणों को सत्वगुण में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, है ना, जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि भगवान स्वयं सत्वगुण में है, तो जब भगवान की शरण में कोई कृष्ण भावना भावनामृत को एक्सेप्ट करता है तो वो डायरेक्ट से सत्वगुण में आ जाता है। फिर उसके ऊपर सत्वगुण जब आ जाता है तो उसकी प्रकृति के अनुसार भी वो कार्य करेगा, लेकिन वो कार्य बंधन कार्य नहीं बनेंगे। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण मानवमृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, देखो कि जब तक आप भक्ति नहीं करोगे तब आप प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करोगे, उसमें छूट नहीं सकते। भक्ति में आने के बाद क्या होता है, हमें जो सेवा दी जाती है हम करेंगे, क्योंकि भक्त भक्त की शरणागति होती है और उसको जैसी भी सेवा दी जाती है वो करता है। लेकिन फिर भी अथॉरिटीज की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये देखे कि जो भक्त है उनकी क्या प्रवृत्ति है, वो कौन सा कार्य करने में उनकी रुचि है, तो उनके अनुसार यदि उनको कार्य देंगे सेवा देंगे तो वो जीवन भर उसको आनंद से करेंगे। लेकिन भक्ति में क्या है कि आपको आपकी प्रकृति नहीं देखते हो, आप क्या देखते हो कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं, बस कृष्ण को प्रसन्न करना ही एम ऑफ लाइफ होता है। लेकिन जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो माया से पार हो जाते हैं, जैसा कि भगवान स्वयं भगवान ने सातवें अध्याय के श्लोक नंबर 14 में बताया। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं 7.14 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां करन्ति ते। मेरी इस माया को पार करना बहुत कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है वे इसे सरलता से पार कर जाता है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना संभव नहीं है, असंभव है। यहाँ विष्णु रूपा जी बोल रहे हैं कि खाली आपको ये बता दिया जाए कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, लेकिन यदि आपका कृष्ण के साथ संबंध नहीं जोड़ा जाता है तो फिर आप माया के बंधन से नहीं छूट सकते हो। क्योंकि भले आपको पता दिया जाए कि आप आत्मा हो, लेकिन फिर भी क्योंकि माया है, प्रकृति के गुण है, वो तो आपको अटैक करेंगे, क्योंकि प्रकृति भगवान के इशारे पर चलती है और जब भगवान की शरण में कोई जीव जाता है तभी वो प्रकृति को या माया को पार कर सकता है। तो केवल सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने से आप प्रकृति के चुंगल से नहीं फंस सकते हो, असंभव। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने कहा कि केवल ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मिकवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं। बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हैं जो ऐसे बताते हैं कि भाई हम हमारे अंदर ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, ज्ञान, लेकिन अंदर से वो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही वो कार्य कर रहे होते हैं। पता नहीं होता है, भले ज्ञान हो जाता है लेकिन जब तक शरणागति नहीं है तो प्रकृति के चुंगल से नहीं छूट सकते हैं, फिर वो ऐसे कार्य करते हैं जो कि साधारण व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो भी नहीं करते, ऐसे निंदनीय कार्य कर बैठते हैं कुछ, क्योंकि हमें अपराध करने से हमारा ज्ञान नहीं बचा रहा है, हमारा प्रेम बचा रहा है। जो हम कृष्ण से प्रेम करते हैं ना, हमें साधना हमारा ज्ञान नहीं करा रहा है। हर किसी को पता होता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जब तक आपके अंदर भगवान का प्रेम नहीं होगा ना, आप माला नहीं उठाओगे। आप समझोगे कि बस हाँ भगवान है ना, सबके पास है, सबकी सहायता कर रहा है, मेरे हृदय में बैठा हुआ है। लेकिन जब आपको ये ज्ञान होगा, जब कृष्ण से प्रेम होगा ना साथ में, कि कृष्ण को अच्छा लगेगा ना, मैं जब कृष्ण को प्रसाद खिलाऊंगी कृष्ण को कितना अच्छा लगेगा, जब मैं कृष्ण का नाम लूंगी कृष्ण को कितना अच्छा लगेगा, जब मैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करूंगी, मैं जब भगवद गीता पढ़ूंगी तो कृष्ण कितना खुश होंगे। जब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा ना फिर आप भक्ति करते हो। जब तक आप ज्ञान आपको सिर्फ पता चल जाना काफी नहीं होता है, फिर तब तक आप अनुष्ठान नहीं करते हो जब तक प्रेम नहीं करते हो। जिन्हें जीत पाना, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिन्हें जीत पाना कठिन है, यानी कि जब तक आप ज्ञान हासिल करते हो लेकिन प्रेम नहीं करते हो तो फिर प्रकृति के गुणों को जीत पाना बहुत कठिन है। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। कि ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। अब क्योंकि भौतिक प्रकृति जो है वो करोड़ों करोड़ जन्मों से हमारे साथ है, तो फिर वो अभी भी भले ज्ञान हो भी जाता है कि हम ये आत्मा है, हम शरीर नहीं है, भले कितना ही बोलते रहे हम वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, लेकिन कार्य वही बॉडी वाले ही करेंगे सुबह से लेकर रात तक। लेकिन जब भगवान के साथ संबंध जोड़ देते हैं तब बॉडी लेवल के कार्य स्वयं ही छूट जाते हैं। फिर मुझे ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि मेरे कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, मुझे अभी सोना नहीं चाहिए, मंगला आरती के टाइम पर उठना चाहिए क्योंकि मेरे कृष्ण को अच्छा लगता है। तो जब प्रेम का संबंध हो जाता है ना, जैसे किसी को पता चल जाता है कि मेरे मंगेतर को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता चल जाएगा तब वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो भी जब प्रेम करेगा ना तो प्रेम जो है वो आपको वो कार्य करने पर बाध्य कर देता है। यानी कि इसलिए भगवान से जब प्रेम करते हैं तो प्रकृतिक गुण भले हमें तंग भी कर रहा होता है, लेकिन फिर भी प्रेम जो है वो अपराध करने से बचा देता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब माया के चुंगल से छूटना है तो पहले क्या करना है, आपको कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्म करने में संलग्न क्यों ना रहे। अभी वो कार्य भी कर रहा है क्योंकि, लेकिन कॉन्शियसनेस कृष्ण को प्रसन्न करने की है, कार्य भी चेंज नहीं कर रहा, वही बना रहा है प्रसाद, खाना घर पे जो बनाता था अब प्रसाद के नाम से बना रहा है, घर साफ करता था अभी मंदिर के नाम पर कर रहा है पहले। तो इसी तरह से जो ही नियत कर्म करने के साथ साथ वो भले कोई अपने नियत कर्म कर रहा है फिर भी भवबंधन से छूटने में सहायता करती है कृष्ण से प्रेम, कृष्ण भावनामृत जो होता है तो भवबंधन से छुड़ा देता है। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों की को परित्याग नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। श्री रूपा जी यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि जब तक आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते हो, कृष्ण की शरणागति नहीं हो जाते हो, तब तक आपको नियत कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, यानी कि जो अपने स्वाभाविक कर्म संन्यास नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मिकवादी नहीं बनना चाहिए। अपने ऐसे बस आपको पता चल गया, ज्ञान हो गया, अभी तक प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचे ही नहीं है और अपने सारे नियत कर्म त्याग दिए, ऐसे नहीं करना होता। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो कृत्रिम आध्यात्मिकवादी बन जाता है, यानी कृत्रिम यानी मस्नुई, वो आपकी टिकेगी नहीं, ये जो आपने भावना अचानक से एक्सेप्ट की है ना वो कभी भी टिकेगी नहीं, पहले आपको कृष्ण भावनामृत में दृढ़ होना है समय के साथ योजना के साथ। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए, इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। श्री भोपाल जी बोलते हैं कि सहसा अपने कार्यों को छोड़कर, क्योंकि अर्जुन क्या चाहता था कि मैं ज्ञान योग प्राप्त करके योगी बन जाता हूँ और अपने स्वधर्म का पालन करना छोड़ देता हूँ, लेकिन भगवान उसे बता रहे हैं कि नहीं, आप क्योंकि प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करोगे, सब लोग अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, तो आप ये निग्रह मत करो, इस तरह मत करो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने कर्मों को नियत कर्मों को पूरा करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाल जी यहाँ पर कितना अच्छा बता रहे हैं कि किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मिकवादी नहीं बनना चाहिए। अपने कर्मों को फौरन से त्याग दोगे ऐसा नहीं करना। अच्छा क्या होगा, अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना में प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए, यानी कि गुरु महाराज के आदेशानुसार जब शुद्ध गुरु आपको जैसे जैसे आदेश देता है कि आप अपने कार्य भी करो और कार्यों के सारा रिजल्ट जो है वो भगवान को समर्पित कर दो, इस तरह गुरु जब आपको प्रशिक्षा देता है तो उसके अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न करें, और जब कृष्ण भावनामृत में बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाए इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। फिर आपको संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, हाँ बस प्रभुपाद जी एक दफा ऐसे भी बताते हैं कि यदि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस होकर कार्य करते हो तो आप अपने घर में रहते हुए भी सन्यासी हो। तो घर त्यागने की या नियत कर्म को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण को जोड़ने की आवश्यकता है, भक्ति योग की आवश्यकता है। यदि हम भक्ति योग में रहकर कार्य करेंगे तो न हम कर्मों के बंधन से बंधेंगे और ना ही अपने कर्म ना करने के अपराध को भोगेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।